दंडोत बंदन अनकुमार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से आपको परम सुख परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। यह हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यूं समझो कि पूर्व जन्म का पुण्य हम सब लोगों का उदय हुआ है कि इस सत्संग में आकर सुखमणि साहेब जी का कथा सुन रहे हैं। सबसे उत्तम हर की कथा। इस जीवन में यदि कोई उत्तम है श्रेष्ठ है सबसे अच्छा है तो वह हरि की कथा है। और जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से हरि की कथा को सुनता है मनन करता है और अपने जीवन में घटाता है वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमणि के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। यह जो संसार है यह प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है। हरि अनंत परमात्मा अनंत हैं और उसकी सृष्टि की रचना भी अनंत है अनलिमिटेड है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज उपदेश कर रहे हैं। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। करोड़ों ऐसे हैं जो पार ब्रह्म परमात्मा के दास हैं। इस संसार में दो तरह के प्राणी हैं, एक संसार का दास है एक वाहेगुरु का दास है। संसार में सब कुछ आ गया, धन का दास, स्त्री का दास, पुत्र का दास, मान बड़ाई का दास। एक परमात्मा को छोड़कर वाहेगुरु को छोड़कर जो और किसी का दास है वह सुखमणि को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य सुखमणि को बनाया है कि हमें परम सुख मिल जाए तो उसको परम सुख से प्रीति करना पड़ेगा और परम सुख तो मात्र परमात्मा है, इसके अलावे और कोई दूसरा नहीं। संसार का दास बनने पर व्यक्ति दुखों में क्लेशों में झंझटों में अपना जीवन खराब कर बैठता है। लेकिन जो परमात्मा का दास हो जाता है वह इस संसार में भी आनंद पूर्वक जीता है और शरीर समाप्त करने के बाद जो परमपिता परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसके चरणों में लीन हो करके परम सुख को प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि सिकंदर जब भारत पर चढ़ाई किया तो उसके गुरु ने बोले थे कि यूँ तो तुम भारत पर चढ़ाई नहीं करोगे, करो, क्योंकि भारत पर चढ़ाई करने से तुम्हारी हार होगी, हो सकता है तुम्हारा प्राण भी चला जाए। हम वर्तमान को देखते हैं, संत महापुरुष गुरुजन भविष्य को देखते हैं, लेकिन उसने अपने गुरु की बात को नहीं माना और भारत पर चढ़ाई किया। गुरु कहते हैं ठीक है, भारत जा ही रहे हो तो दो चीज़ें मेरे मुझको ले आना, एक कोई ब्रह्मज्ञानी संत ले आना और एक वहाँ का गंगा जल ले आना। समुद्र के किनारे बादशाह घूम रहा है, अचानक देखा कि सुबह सुबह एक फकीर समुद्र के किनारे जो रेता है उस पर लेटा हुआ है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रहा है और वह महात्मा आनंदित है, मस्त है। उसके शरीर से एक सुगंध निकल रहा है। सिकंदर बादशाह नज़दीक गया, नमस्कार किया, नमस्कार करके देखता क्या है, उस महात्मा के पास एक बहुत बड़ा लाल है हीरा, जो इतना ज़्यादा चमक रहा है कि आँख भी नहीं टिकता है। सिकंदर पूछता है कि महात्मा जी, यह जो आपके पास पत्थर है ये क्या है? महात्मा जी ने बोले कि इसके रहस्य को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, या इसके बारे में सिर्फ बता दूं? सिकंदर कहता है इसका रहस्य मैं देखना चाहता हूं। वो महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा करो, एक बहुत बड़ा तराजू लेके आओ। सिकंदर ने अपने मंत्री को हुक्म किया, एक बहुत बड़ा तराजू आ गया। वह फकीर कहता है कि राजन, एक तरफ एक पलड़े पर इस पत्थर को रख दो और दूसरे तरफ तुम्हारा जितना भी खजाने का दौलत है वो रखते जाओ। राजा ने अपने खजाने का सारा दौलत मंगवाया, ऊंट से, बैलगाड़ी से और भी साधनों से। एक तरफ वो जो पत्थर है वो रखा हुआ है, दूसरे तरफ संसार के जितने हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब रख रहा है, लेकिन फिर भी जिधर वो पत्थर है वो पलड़ा नीवा है। राजा दूसरे तरफ सब कुछ रखता जा रहा है, हीरे जवाहरात सब कुछ क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी वो पलड़ा ऊपर का ऊपर ही है। राजा हैरान होता है, इसमें क्या रहस्य है कि एक छोटा सा पत्थर और इतना भारी कि वो पलड़ा नीवा का नीवा है और ये उठ नहीं रहा है। वहाँ पर सिकंदर पूछता है इसमें क्या रहस्य है, कहते हैं देखना चाहते रहस्य। उस महात्मा ने एक थोड़ा सा धूल रेता जमीन से उठाया और उस पत्थर के ऊपर डाल दिया, पत्थर ढक गया। जो ही पत्थर ढक गया वो पलड़ा ऊपर हो गया और हीरे जवाहरात जिस तरफ पलड़े पर था वो नीवा हो गया। वो पहला रहस्य अभी सुलझा ही नहीं था, एक रहस्य और सामने आ गया। वो राजा पूछता है कि मैं तो इस रहस्य को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि ये बार बार मुझको रहस्य में आप डाल रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है वो बताएं। वो फकीर कहता है कि राजन, ये जिंदगी का रहस्य है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा हीरा है, आत्मा रूपी हीरा, वो इतना कीमती है उसके बराबर ये सारा संसार का दौलत, एक पलड़े पर सारा संसार का दौलत रख दो और एक तरफ जो आत्मा है वो रख दो। संसार का दौलत का दो कौड़ी कीमत नहीं है आत्मा के बराबर। लेकिन इस आत्मा के ऊपर धूल थोड़ा पड़ जाए, काम क्रोध लोह मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मल विक्षेप और आवरण, इन चीजों का धूल यदि आत्मा पर पड़ जाए तो फिर संसार का दौलत कीमती हो जाता है और आत्मा जो है कीमती होता हुआ भी वह दो कौड़ी का नहीं रह जाता है। साथ संगत जी, जो व्यक्ति संसार का दास होता है, जिसका जिसके अंतःकरण में विकार हैं, जिसने प्रभु का सुमरण नहीं किया है, जो प्रभु का दास नहीं बना है, उसके आत्मा के ऊपर अविद्या रूपी अहंकार रूपी धूल पड़ा हुआ है। और जब आत्मा पर अहंकार अविद्या का धूल होता है तो वह व्यक्ति दो कौड़ी का नहीं होता, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता, क्योंकि इस शरीर को जला करके आप बेचने जाओ तो 5 रुपया भी नहीं मिलेगा इसका। लेकिन यदि तुम आत्मा का अनुभव कर लो गुरु की कृपा से तो तुम इतना कीमती हो जाओगे जिसका मुकाबला यह सारा ब्रह्मांड नहीं कर सकता, सारा ब्रह्मांड से भी ज्यादा कीमती हो जाओ। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज यहां उपदेश कर रहे हैं, कई कोट पार ब्रह्म के दास, करोड़ों ऐसे हैं जो सदगुरु की कृपा से पार ब्रह्म के दास हुए हैं। संसार का दास होने में व्यक्ति दुखी होता है, बार बार जन्मता मरता है और क्लेश में जीता है, चिंताओं में जीता है, डिप्रेशन में जीता है। लेकिन जो पार ब्रह्म वाहेगुरु का दास जो बन जाता है वह हर एक परिस्थिति में आनंदित होता है, सुखी होता है, मस्त होता है। इसलिए दास बनने से पहले विचार करना, मैं किसका दास बन रहा हूं। मानुष मानुख की टेक वृथ्वी सब जान, देवन का एक है भगवान। एक भगवान का दास होना है, व्यक्ति का दास नहीं होना है। व्यक्ति का दास होगे तो सदा दुखी रहोगे, वाहेगुरु का दास होगे तो सदा आनंदित रहो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तीन होवत आत्म प्रदास। जो पार ब्रह्म वाहेगुरु के दास बन जाते हैं उसको आत्मा में प्रकाश होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वह परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब लहरें सागर की लहरें सागर में समा जाती है तो सागर हो जाता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति गुरु की कृपा से आत्मा परमात्मा का दास हो जाता है तो उसको आत्मा में प्रकाश हो जाता है, इनलाइटनमेंट होती है। उस जो महाप्रकाश है तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान हो जाता है। और तुम इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती हो जाते हो। संसार एक धूल जैसा तुच्छ हो जाता है और तुम इस ब्रह्मांड में सबसे कीमती हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, इतना महत्व हो जाता है। कई कोट पार ब्रह्म के दास, करोड़ों ऐसे हैं जो गुरु की कृपा से, स्वयं की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, शास्त्र की कृपा से पार ब्रह्म के दास हुए हैं। और जो पार ब्रह्म के दास हुए हैं, तिन होवत आत्म प्रकाश, उसको आत्मा में ही प्रकाश हुआ है, आत्मा में ही जो है अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है। कई कोट तत् के बेते सदा निहार है एको नेत्रे, करोड़ों ऐसे हैं जो तत्व को जानते हैं। जैसे दूध में घी तत्व होता है, इसी प्रकार से इस संसार में वाहे गुरु ही तत्व है, वाहे गुरु का ज्ञान ही तत्व है। उस तत्व को जो जानता है, अनुभव करता है, वह व्यक्ति इस संसार में हर एक तरफ एक परमात्मा का ही दर्शन करता है। निहारह का मतलब होता है देखना, सदा निहारह एको नेत्रे, वो जो है एक ही देखता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कई कोट तत्व के बेते, करोड़ों ऐसे हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ज्ञान होना ही तत्व का अनुभव है। तत्व है एग्जिस्टेंस, तत्व है वाहेगुरु, तत्व है आत्मा। आत्मा का अनुभव होने पर वह व्यक्ति हमेशा चारों तरफ एक ही देखता है। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कि चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, वाहेगुरु ही वाहेगुरु। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि सब में परमात्मा देखेंगे, तो बताओ हम किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे द्वेष करेंगे। इसलिए आत्म अनुभव के बगैर ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो नहीं सकता। इसीलिए साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी आगे बेनती करो, हे सच्चे पातशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान करा दो। कई कोट तत्व के बेते सदा निहारह एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवह, अमर भय सद सद ही जीव। करोड़ों ऐसे हैं जो प्रभु के नाम रस को पीते हैं। एक तो है जो मुंह से पीते हैं, वो पानी या जूस, क्योंकि इंडिया में जाओ ना तो थाल में आपको पानी लेके आएगा, लेकिन यहाँ लोग जूस पूछते हैं। लोग ले जाते हैं ना प्यार, स्वामी जी किस चीज़ का जूस पीना है, ये थोड़ा सा फर्क, लेकिन फिर भी वो अमृत नहीं है। बाहर लगता है बहुत अच्छा, अंदर जाते ही जो है वो मैला हो जाता है। अंदर जूस जाए और बाहर निकल जाए, फिर तुम्हीं को जिसने पिया है उसी को पीने के लिए दे तो वो पी नहीं सकता। खाधा हुआ स्वाह भी खानस्यम दोस्ती। एक तो है जल, वो भी अमृत है, वो शरीर को ताकत देता है, जूस शरीर को ताकत देता है। एक और अमृत है जो कान से पिया जाता है, वो है हरि की कथा। हरि की कथा कान से पिया जाता है, और जो व्यक्ति हरि की कथा को, क्योंकि सबसे उत्तम हर की कथा, जो वाहेगुरु की कथा को कान से पीता है, वह व्यक्ति सदा निहाल हो जाता है। कई कोट नाम रस पीवह, नाम जो है प्रभु का नाम कान से पिया जाता है और मुंह से उच्चारण होता है। पहले तो आप सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, एकांत में बैठकर आंख बंद कर शरीर को हिलाए बगैर जोर जोर से जो है सतनाम वाहेगुरु का जाप करना है। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे जाप करना है और बाद में श्वास अंदर जाए तो सतनाम, श्वास बाहर जाए तो वाहेगुरु, या श्वास अंदर जाए तो वाहे, श्वास बाहर जाए तो गुरु। जब ये तीन प्रकार की साधना सालों श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आप आंख बंद करोगे तो देखोगे कि अंदर जाप हो रहा है, उसको अजपा जाप कहते हैं। ये बहुत अभ्यास के बाद प्रत्येक के जीवन में आता ही आता है, जिसके बारे में साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, आत्म रस जह जानहि सोहै खालस देव, प्रभु मह मोह मह तास मह रंचक नाहिन भयो। जो अंदर ही आत्मा का रस लेता है वह सिख में और मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सच्चा सिख वही है जो आत्मा के रस को लेता है। इसके अलावे तो सब समझो अभी बच्चे हैं, पूर्ण सिख है वो है, पूर्ण खालसा वो है जो आत्मा के रस को लेता है। और आत्मा का रस वही ले सकता है जिसके ऊपर साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की विशेष कृपा, विशेष कृपा, और विशेष कृपा उसी पर होती है, भांडा धोई भैंस धूप देवो तव दूधे को जाओ। हृदय को शुद्ध करके सत्संग में सिर्फ सत्संग को पीने के लिए आवे, सत्संग में आकर सत्संगियों को महापुरुषों को राय देने के लिए नहीं आना, राय लेने के लिए जाना है। जो संतों को राय देते हैं वो खाली हाथ आते हैं, जो संतों से राय लेते हैं वो अपनी झोलियां भर के जाते हैं, वो आत्मरस पाते हैं। कई कोट नाम रस पीवे है अमर भय सद सद ही जीवे। और जो वाहेगुरु का जो नाम है उस नाम को जो पीता है वो अमर हो जाता है सदा के लिए, वो जन्मता मरता नहीं है। उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जो मरेगा वो शरीर मरेगा और मैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अलग आत्मा हूँ, और आत्मा की कभी मौत नहीं होती, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आत्मा का को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। इसलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कई कोट नाम रस पीवह अमर भय सद सद ही जीवे। वो सदा जीता है, वो मरता ही नहीं है, क्योंकि जो मरना है वो शरीर का स्वभाव है, आत्मा का अमर स्वभाव है। कई कोट नाम गुण गावे है आत्म रस सुख सहज समावे। करोड़ों ऐसे हैं जो हरि के गुण को गाते हैं, कई कोट नाम गुण गावे है, प्रभु के नाम को हमेशा गुणगान करते रहते हैं, चलते फिरते सोते बैठते जागते सतनाम श्री वाहेगुरु। जिसका जीवन सतनाम वाहेगुरु हो गया है वह व्यक्ति जो है ऐसे करोड़ों हैं वो नजर नहीं आते, वो संसार में मूर्ख जैसे लगते हैं देखने में, क्योंकि वो जनाते नहीं अपने को। कई कोट नाम गुण गावे है आत्म रस सुख सहज समावे। वो हो आत्मा का जो रस है वो है सुखमनी, परम सुख। परम सुख जो है वो आत्मा का रस है, और संसार का रस है दुख, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, दो रस है। संसार का रस दुख, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष है, और आत्मा का रस जो है वो आनंद है, सुखमनी है। आत्म रस सुख सहज समावे, वह व्यक्ति वाहे गुरु में सहज, वाहे गुरु के चरणों में सहज ही समाज आता है जो वाहिगुरु से प्रीति करता है। अपने जन को सास सास समारे, मैं पहले कह चुका हूँ, जो वाहिगुरु का दास हो जाता है वह उस दास को प्रभु जो है सास सास समारे, एक एक श्वास ख्याल रखता है। फिर तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत नहीं, वो फिर परमात्मा तुम्हारा ख्याल रखता है। जो संसार का ख्याल करता है वो परमात्मा का ख्याल भुला देता है, और जो परमात्मा के ख्याल को भुला देता है, संसार का ख्याल रखता है, तो संसार के लोग तुमको तभी तक ख्याल करेंगे जब तक तुमसे कुछ स्वार्थ होगा। जब तुमसे कोई स्वार्थ पूरा संसार का नहीं होगा तो तुमको फिर कूड़े में डाल देंगे। इसलिए याद रखो कि किसका दास बनना है। हमें तो वाहेगुरु का ही दास बनना है, क्योंकि हम लोग सिख हैं। सिख वही है जो वाहेगुरु का दास है। अपने जन को सास सास समारे, जब हम वाहेगुरु सच्चे पातशाह का दास हो जाएंगे तो वो वाहेगुरु हमको एक एक श्वास अपने हाथों में, अपने हृदय में रखेंगे, श्वास श्वास हमको जो है हमको बचाएंगे, ख्याल रखेंगे। नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, जो पार ब्रह्म का दास हो जाता है वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है। जो परमात्मा का प्यारा हो जाता है उसको जो है संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी दुख नहीं दे सकता, क्लेश नहीं दे सकता, वो हमेशा ही आनंदित रहता है। एक समय की बात है, कीरतपुर साहिब में सातवें पातशाह साहेब श्री गुरु हर राय साहेब जी महाराज अपने गद्दी में सुशोभित थे। एक माई ताबो थी, वह युवा अवस्था में जब वो जवान थी तो कभी सत असत का विचार नहीं करना, कभी सत्संग में नहीं जाना, और बहुत पाप करी उसने। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि तीन बार लड़कियां पैदा हुआ, तीन बार उसने गले घोट करके मार दी। और जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, लड़की को मार देते हैं, ये बहुत बजर कपाट पाप, ये बहुत बड़ा पाप है। जब वो ताबो बड़ी हुई तो उसका पिता, उसका भाई, उसका पति, उसका सास ससुर धीरे धीरे करके सारे मर गए। जो घर में धन था वो भी खत्म हो गया, और उसका जीवन जो है नरक हो गया। शरीर भी साथ ना दे, लेकिन किसी कहते हैं ना, एक घड़ी का सत्संग भी जीवन को सुधार देता है। किसी ने कहा कि ताबो तुम इतनी दुखी हो, यहाँ पर सच्चे पातशाह साहेब श्री गुरु हर राय साहेब जी विराजमान हैं, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर चार पदार्थ सब कुछ मिलता है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, जो मांगता है। यो माम प्रपद्यन्ते तास तथा भजाम्यम, जो जिस इच्छा को लेके जाता है गुरु महाराज पूरा करते हैं। ओ जी, उसने मन में सोचती है हम गुरु को क्या लेके जाएं। उसने सूत काती, रुई लेकर के सूत काती, काफ़ी मेहनत से फिर उसका कपड़ा चादर बनाई। सोचते हैं गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और ये सच्चाई है कि कोई भी महापुरुष के पास गुरुद्वारे में, यूँ तो इस गुरुद्वारे में जो है चढ़त को मना किया है, लेकिन फिर भी भावना से एक सूखा फूल भी चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हृदय ही चढ़ाना चाहिए, भाव ही चढ़ाना चाहिए। वो ताबो चादर बनाई और रोटी बना करके गुरु महाराज के पास चल पड़ी। बहुत श्रद्धा मन में, बहुत प्यार है, और जब नज़दीक पहुंची है तो गुरु महाराज सिंहासन में, दूर अभी सत्संग हो रहा था, राज सिंहासन में बैठे थे, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुकी थी कि वहाँ उसको पहुँचना मुश्किल था। अंदर से वो अंतर ध्यान होकर के याद करती, सच्चे पातशाह मेरे शरीर में इतनी समर्था ने कि आपके पास पहुंच सकूं, लेकिन यह रोटी आपके लिए ही बनाई, आप कृपा करके यहाँ आके छक जाओ। रास्ते में थक करके बैठ गई थी थड़े पर। सच्चे पातशाह जो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, साहेब श्री गुरु हर राय साहेब सिखों को बोले कि भाई जल्दी मेरा घोड़ा ले आओ, हमें शिकार करने के लिए जाना है। घोड़े पर बैठ गए और घोड़े पर आकर के माई ताबो के पास पहुंच गए। कहते माई जल्दी लो, मुझे भूख लगा है, ये रोटी दो मुझको। उस रोटी को खा करके बहुत तृप्त हो गए। जैसे जैसे रोटी खा रहे हैं सच्चे पातशाह उसके कष्ट, उसके पाप को समाप्त कर रहे हैं। उसका हृदय शुद्ध हो गया माई ताबो का। उसके बाद वो कहती है, सच्चे पातशाह मैं आपके लिए ये चादर बनाई हूँ, आप कृपा करके इस गरीबनी का ये भेंट स्वीकार करें। साहेब श्री गुरु हर राय साहेब उसको स्वीकार करते हैं, उस चादर को लेते हैं। और ज्यों ही उस हाथ से चादर को लेते हैं, वो माई का जो भाग था वो खुल गया, उसको प्रकाश हुआ, नानक नदरी नदर निहाल, उसकी सारी अज्ञानता दूर हो गया और वो वाहिगुरु के चरणों में समा गई, वो परम गति को प्राप्त करी। इसलिए जो संसार का दास है वो दुखी होगा, जो वाहिगुरु और सदगुरु का जो दास होगा वो परमात्मा को पाएगा, जो परमात्मा को पाएगा वो सदा आनंदित होगा, उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।